اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے قلندر شعور، صفحہ نمبر ہے 140. ہم نے پیچھے اس سے پیشتر جو پڑھا کہ سانس کا تعلق کتنا گہرا ہے ہماری زندگی سے. اگر سانس چل رہی ہے تو ہم زندہ ہیں، اور زندگی سانس سے کیا مل رہا ہے؟ ہمیں آکسیجن ملتی ہے. یہ آکسیجن ذہن میں یعنی دماغ میں سٹور ہوتی ہے، باقاعدہ اس کا ذخیرہ ہوتا ہے. اگر یہ ذخیرہ جتنا زیادہ کر لیا جائے تو آپ کی صلاحیتیں اتنی زیادہ نکھرتی ہیں. یہ ہم نے پڑھا. اب اس کے حوالے سے ایک مثال بیان فرما رہے ہیں مرشد کریم کہ 200 سال کی نیند. یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بہروپیہ تھا، ہمیشہ نیا بہروپ بنا کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تاکہ بادشاہ کو مغالطے میں رکھ کر انعام میں گھوڑا اور جوڑا حاصل کرے، مگر بادشاہ اس کے بہروپ سے متاثر نہیں ہوتا تھا. چنانچہ بہروپیہ ایک یوگی کے پاس گیا اور اس سے حبس دم یعنی سانس پر کنٹرول حاصل کرنے کی مشق سیکھی، اور پھر یوگی بن کر اپنے شہر کے مضافات میں قیام کیا. ایک چھوٹا سا گنبد بنایا، چند چیلے جمع کیے، حبس دم کر کے بیٹھ گیا اور گنبد کا دروازہ اس خیال سے بند کروا دیا کہ جب بادشاہ کو خبر ہوگی کہ ایک یوگی اتنی مدت سے گنبد میں بند ہے تو بادشاہ یہاں آ کر گنبد کھلوائے گا. چیلے مجھے حبس دم کے فارمولے کے مطابق زندہ کر دیں گے اور میں گھوڑا اور جوڑا انعام میں لے لوں گا. خدا کی قدرت کے چند روز میں انقلاب آ گیا. نہ بادشاہ رہا نہ سلطنت رہی، شہر بھی برباد ہو گیا، چیلے مرکب کے، گنبد بند کا بند ہی رہا. 200 سال کے بعد شہر دوبارہ آباد ہوا. کسی شخص نے یہ دیکھنے کے لیے کہ گنبد کے اندر کیا ہے، گنبد کو کھلوایا، دیکھا کہ گنبد کے اندر ایک صحیح و سالم پورے جسمانی خد و خال کے ساتھ آدمی مراقبے میں بیٹھا ہے. لوگوں کا ہجوم ہو گیا. اس ہجوم میں ایک یوگی بھی تھا. اس نے مراقب شخص کو پہچان لیا اور حبس دم کے قاعدوں کے مطابق عمل کیا اور دل کی دھڑکن شروع ہو گئی. ہوش و حواس بحال ہوئے. جیسے ہی وہ آدمی ہوش و حواس میں آیا، بولا، لاؤ میرا گھوڑا اور جوڑا. لوگ حیرت کے ساتھ ایک دوسرے کو تکنے لگے اور کہنے لگے، یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ شخص کوئی پاگل ہے، مجنوں ہے، یا اس کو ہذیان یا خفقان ہو گیا. اس بہروپیے نے بتایا کہ میں نے حبس دم کا یہ عمل فلاں بادشاہ کے زمانے میں فقط گھوڑا اور جوڑا لینے کے لیے کیا تھا. یعنی سانس پہ کنٹرول کرنے سے اس نے اپنے اندر یہ صلاحیتیں اجاگر کر لیں، آکسیجن کا ذخیرہ کیا، دل کی حرکت کو سلو کر کے اس کو نہ ہونے کے برابر کر دیا اور وہ پڑا رہا. 200 سال گزر گئے. غور کریں. اب اس واقعے کی تشریح میں یا جو بات چل رہی ہے اس کی مزید وضاحت کے لیے حضور مرشد کریم نے یہ ٹاپک ہے سانس کے دو رخ. حضور فرما رہے ہیں کہ تخلیقی فارمولوں کا علم رکھنے والے بندے، یعنی جو تخلیقی فارمولوں کا علم رکھنے والے بندے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ کائنات اور کائنات کے اندر تمام مظاہرات کی تخلیق دو رخوں پر کی گئی ہے. اس حقیقت کی روشنی میں سانس کے بھی دو رخ متعین ہیں. اب ایک رخ یہ ہے کہ آدمی اندر کو سانس لیتا ہے، اور دوسرا رخ یہ کہ سانس باہر نکالا جاتا ہے. یہ سانس کے دو رخ ہیں. سانس گہرائی میں سانس لینا، یعنی اندر سانس لینا اور گہرا لینا، یہ سانس کی سعودی حرکت ہے. یعنی اس میں ہماری ذات अरूज की तरफ जाती है, सऊद करती है यानी ऊपर को चढ़ती है, और सांस का बाहर निकालना ये नजूली हरकत है। अब सऊद उस हरकत का नाम है जिस हरकत में तख्लीक का रब्त बराह रास्त खालिक के साथ कायम है। गौर करें, जब आपका नुक्ता ज़ात सऊदी हरकत करेगा तो आपका ताल्लुक अपने खालिक से जुड़ जाएगा। अब गौर करें कि इसी एक जुमले में कितना बड़ा राज आ गया कि आप सांस आहिस्ता 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 अंदर को खींचते जाएं तो क्या होगा, आपका नुक्ता ज़ात सऊद करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। हजूर फरमा रहे नजूल उस हरकत का नाम है जिसमें बंदा गैब से दूर हो जाता है, यानी जब हम सांस बाहर निकाल रहे होते हैं तो हमारा ताल्लक दुनिया से जुड़ता है, जब हम सांस अंदर ले रहे होते हैं तो हमारा ताल्लक अपने खालिक से कायम हो रहा होता है। नजूल उस हरकत का नाम है जिसमें बंदा गैब से दूर हो जाता है और टाइम एंड स्पेस की गिरफ्त उसके ऊपर मुसल्लत हो जाती है। ये कानून देखें, एक पैराग्राफ में कितनी बड़ी बात बता दी। ये जो बात आप पूछ रहे थे कि जी ये जखीरा कैसे बढ़ाया जाए, तो इसका तरीका बता दिया उन्होंने कि आप सऊदी रुख पे तवज्जो दें, यानी सांस को अंदर खींचने में। ये जो जिंदगी है ये जिंदगी दरअसल एसिमिलेशन है, इम्बाइब करना, किसी चीज को अंदर खींचना, इत्तलात को अंदर खींचना, सांस को अंदर खींचना। देखे ना, हम मादी जोन में हर चीज, मतलब सांस हो गया पानी हो गया तो गिजा हो गई, ये ठोस माया गैस तीनों चीजें हम अंदर खींच रहे हैं, तो ये हमारी गिजा कहला रही है, पानी कहला रहा है, सांस कहला रहा है, यही हमारी जिंदगी की बुनियाद है। लेकिन ये बजाते खुद जिंदगी नहीं है। अब जहनी तौर पे आप आइडियाज ख्यालात को अपने अंदर जमा करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, इम्बाइब करते हैं, ये आपकी जहनी जिंदगी है। और जब हम अल्लाह की सिफात का इदराक हासिल कर रहे होते हैं तो ये सिफात हमारे अंदर जज़्ब हो रही होती हैं, ये रूहानी जिंदगी है, ये है कुल सारा खेल। आगे हजूर मुर्शिदे करीम एक बात सुना रहे हैं, बात फरमा रहे हैं, कहते हैं जब कुछ ना था अल्लाह था, अल्लाह ने चाहा, यानी जब कुछ ना था सिर्फ अल्लाह की जात थी तो अल्लाह ने चाहा, क्या अल्लाह ने चाहा और सारी कायनात तखलीक हो गई, यानी अल्लाह की चाहत जो है वो मजहर बन गई, कायनात तखलीक हो गई। कायनात की ये तखलीक जो है ये अल्लाह का चाहना है, तो कुलिया ये बना कि तखलीक की बुनियाद अल्लाह का चाहना है। अब ये सवाल कि अल्लाह ने क्यों चाहा, ये चाहत किस तरह से मजहर बनती है, अब इसको हम समझेंगे। अल्लाह का चाहना अल्लाह का जहन है, यानी अल्लाह के जहन में काम हरकत हुई, इसको अल्लाह की चाहत कहा गया। यानी कायनात और हमारा असल वजूद अल्लाह के जहन में है, यानी अल्लाह की चाहत कहाँ है, अल्लाह के जहन में। तो हमारा वजूद कायनात का हिस्सा है, तो हम कायनात का हिस्सा होने के नाते कहाँ हैं? आप कहते हैं जी मैं जमीन पे हूं, तो जमीन कहाँ है, कायनात में, कायनात कहाँ है, अल्लाह के जहन में। तो गोया हमारा असल वजूद, इसमें जुमला ये लफ्ज नोट करें, असल वजूद, हमारा असल वजूद अल्लाह के जहन में है। अब कानून ये है कि शय की वाबस्तगी असल से बरकरार ना रहे तो वो शय कायम नहीं रहती। देखे ना, हम एक मिसाल देते कि अगर दरख्त की जड़ कट जाए, दरख्त का ताल्लुक उसकी जड़ से कट जाए तो वो दरख्त कायम नहीं रहता। ये बात हमें बड़ी आसानी से समझ आती है। अब कानून यही है कि अगर बंदे का असल वजूद अल्लाह के जहन में है तो उसका ताल्लुक अल्लाह से है या नहीं है, जाहिर है कि है। अब हम उस ताल्लुक की तरफ मतवजो नहीं है, जब हम उस ताल्लुक की तरफ मतवज हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारी वाबस्तगी कायम हो जाती है। इस वाबस्तगी का कयाम मुजाहराती खदो खाल में सऊदी हरकत से कायम है। ये जो ऊपर सांस की सऊदी हरकत का तज़करा आया, ये इससे हमारी वाबस्तगी का मुजाहराती जो खदो खाल हैं वो इस बेस पे कायम है कि हम सांस अंदर को खींच रहे हैं, लेकिन तवज्जो कितनों की है। हमारा ध्यान हमारी तवज्जो अगर सांस पे रुकी रहे और हम सांस को तवज्जो से अंदर खींचने की तरफ मतवज्जो रहे तो ये सबसे बड़ा मुराकबा है। इसको भी मुराकबे की एक शक्ल मान लें आप। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो अंदर आपका शऊर ऑक्सीजन का जखीरा हो रहा है, आपके करंट्स बढ़ रहे हैं, साथ साथ आपका रब जो है वो आपके खालिक और आपके मालिक के साथ कायम हो रहा है। ये है इसका इतना बड़ा राज, ये इतनी बड़ी बात, इतनी बुनियादी बात। फरमाया कि इस वाबस्तगी का कायम, यानी ये जो हमारा अल्लाह के साथ रब्त है, इसका कयाम जो मुजाहराती हदो खाल में, यानी दुनिया की सतह पे, जिस्मानी सतह पे हमारी इस सऊदी हरकत से कायम है। यानी जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो ये सारा निज़ाम इस सऊदी हरकत से जुड़ा हुआ है, और सऊदी हरकत अंदर सांस लेना है। इसके बरक्स हमारा जिस्मानी तशखुस भी है, ये हमारा बातनी तशखुस है और हमारा एक जिस्मानी तशखुस भी है। इस जिस्मानी और मादी तशखुस की बिना ये नजूली हरकत है। ये जो हम सांस बाहर निकालते हैं ये हमारे इस मादी और जिस्मानी तशखुस की बुनियाद है। देख लीजिए साफ लिखा हुआ है कि इस जिस्मानी और मादी तशखुस की बिना नजूली हरकत है। अब अगला टॉपिक है तवानाई और रूह। अब इसका ताल्लुक सारे का निजाम कैसे बनता है, सुनिए कि कायनात और उसके अंदर तमाम मुजाहिरात हर लम्हा और हर आन एक सर्कल में सफर कर रहे हैं, एक दायरे में सफर कर रहे हैं। मिसाल जैसे जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गिर्द घूम रहा है, तो ये सारी चीजें इसी तरह हम कहीं अल्लाह के जहन से निकल के ये 9 दर्जे तय करके जमीन पे पहुंचे, आलम में नासूत में पहुंचे, अब वापस हमारा सफर वापसी का तय हो रहा है। तो गोया ये एक सारी चीजें एक सर्कल है, इसी को दायरा कहा गया। कायनात और उसके तमाम मुजाहिरात हर लम्हा और हर आन एक सर्कल में सफर कर रहे हैं, और कायनात में हर मजहर हर चीज जो नजर आ रही है, मजहर इजहार कर रही है अपना, एक दूसरे से आशना और मुतारिफ है। यानी एक तो आप एक सर्कल में सफर कर रहे हैं और दूसरे वो सब मुजाहिरात एक दूसरे से वाकिफ और आशना है। तारुफ का ये सिलसिला जो है ये ख्यालात पर मबनी है, यानी कि ये ख्यालात की बेस पे है। हर चीज जब आप किसी भी चीज को देखते हैं तो उसकी इतलात आपके जहन में आती हैं, तो ये ख्याल आते हैं हमें। यानी ये ख्याल जो है वो दर्जा ब दर्जा तसव्वुर और एहसास बनता है। तो तारुफ का ये सारा निजाम ख्यालात पे कायम है। इन्हीं ख्यालात की रीडिंग का, कैचमेंट का, एक रिसीव करने का, इनकी रिसेप्शन का एक निजाम जो है जिसको आप टेलीपैथी कहते हैं, वो असल में थॉट ट्रांसफरेंस का सिलसिला है। अगर हम ख्यालात को रीड करना और पढ़ना सीख लें तो हमें जानवरों की बात भी समझ आएगी, जमादात की बात भी समझ आएगी, नबातात की बात भी समझ आएगी। ये बात इतनी बड़ी बात फरमा रहे हैं हजूर, क्या कहा कि कायनात में हर मजहर एक दूसरे से आशना और मुतारिफ है, और तारुफ का ये सिलसिला ख्यालात पर मबनी है। साइंस ने आपस में तबादला ख्याल और रिश्ते को तवानाई का नाम दिया। हमारी साइंस जो है वो इस सारे तबादला ख्याल और इस रिश्ते को तवानाई के नाम से जानती है कि ये एनर्जी है, एनर्जी है। साइंस की रूह से कायनात की किसी शय को, हाँ वो मरई यानी विजिबल हो या गैर मरई यानी इनविजिबल हो, कुलिया तन फना नहीं है। इस नुक्ते को जहन नशीन कर लें कि ये बात हमारी साइंस भी तस्लीम कर चुकी है कि कायनात की किसी भी शय को, चाहे वो मरई हो या गैर मरई हो, उसको कुलिया तन फना नहीं है। कुलिया तन यानी टोटेलिटी में पूरी मुकम्मल फना नहीं होती, उसके असरात रहते हैं, वो एनर्जी जिससे वो बनी है वो एनर्जी बाकी रहती है, ये वो खुद मान रहे हैं। उनका कहना है कि मादा मुख्तलिफ डाइयों में नकल मकानी करके तवानाई बन जाता है, यानी वो कहते हैं कि मादा मैटर जो है ये मुख्तलिफ डाइयों में नकल मकानी करके तवानाई बन जाता है। गौर करें जरा इस जुमले पे, और तवानाई रूप बदल बदल कर सामने आती रहती है, लेकिन मुकम्मल मौत किसी पर भी वारिद नहीं होती। अब जरा इस तवानाई का देखें ना मजहर, देखें कि बीज है, बीज में से पौधा निकला, उसने ऑक्सीजन बनाई, निशास्ता बनाया, उसके बाद वो सूख गया तो वो आग जली, तो पौधा कहाँ गया? उसने अपने नौ के खदोखाल को अपने बीजों में मुंतकिल कर दिया और खुद वो तवानाई का रूप लेके तो इसी फिजा में मदगम हो गया। रूहानियत में इसी तवानाई को रूह का नाम दिया गया। ये देख लीजिए वाजे हो गई बात कि रूद असल में तवानाई है, असल चीज जात है, जात इस एनर्जी से, जिस एनर्जी से काम ले रही है उसको रूह कहा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हजूर मुर्शिद करीम ने बहुत शगाफ बात फरमाई है, लेकिन हमारी ऊंधी खोपड़ियों में घुस नहीं रही। रूहानियत में इसी तवानाई को रूह का नाम दिया गया है, और रूह को जो इल्म वदियत कर दिया गया है, यानी ये कैसी तवानाई है जो बाशऊर है, जिसमें इल्म है, रूह को जो इल्म वदियत कर दिया गया है वही इल्म ख्यालात तसव्वुरात और एहसासात बनता रहता है। ये है सारी कहानी कि ये जो एनर्जी है जो पूरी कायनात में फैली हुई है उसके अंदर इल्म भी है, और वही इल्म मखलूक के अंदर ख्यालात तसव्वुरात और एहसासात बनता है। अगर हमारा जहन इस तरफ मतवज्जो रहे कि मेरे अंदर ख्याल आ रहे हैं, मुझे इन चीज़ों का तसव्वुर वाज़े हो रहा है, या मैं किसी चीज़ को महसूस कर रहा हूँ, तो ये सारे महसूसात किसी एनर्जी पे बेस कर रहे हैं और आपके जहन की तवज्जो पे बेस कर रहे हैं, हत्ता कि ये तवज्जो भी एनर्जी है। जो तवज्जो हम किसी चीज़ पे मरकूज करते हैं तो ये भी तो एनर्जी हुई ना, तो गोया एनर्जी जो है वो एनर्जी को समझ रही है और एनर्जी जो है वो एनर्जी को महसूस कर रही है। अब ये फरमा रहे हैं कि ये ख्यालात और तसव्वुरात लहरों और शुआओं के दोष पर हमा वक्त हर आन और हर लम्हा मसरूफ सफर रहते हैं। क्या चीज? वही इल्म, ख्यालात और तसव्वुरात लहरों और शुआओं के दोष पर सफर करते हैं। फिर इन लहरों की किस्में हैं, आवाज की लहरें हैं, फिर रोशनी की लहरें हैं, हरारत की लहरें हैं, और कितनी ही गैर मरई लहरें हैं, ख्यालात भी लहरें हैं, ये सब तसव्वुरात भी लहरें हैं, ये सब लहरों का निजाम है। अगर हजूर फरमा रहे हैं, अगर हमारा जहन यानी हमारा ये जो रिसीविंग सेट है, अगर हमारा जहन इन लहरों को पढ़ने और उनको हरकत देने पर कुदरत हासिल कर ले, गौर करें, न सिर्फ इन लहरों को आप रीड कर सकें बल्कि इनको अपनी मर्जी से हरकत दे सकें, अगर ये कुदरत हासिल कर ले तो क्या होगा कि हम कायनात के तस्वीर खानों में जो ख्यालात का रद्दोबदल हो रहा है, ख्यालात के रद्दोबदल का वकूफ हासिल कर सकते हैं। वकूफ यानी रुकना, यानी उस पर ठहर के उसको समझना। इस बात को तवज्जो से समझ लीजिए, बहुत ही खुल के बात कह दी ये कलंदर शऊर। अब मैंने जैसे अर्ज किया कि अब ये अपने अख्तितामी सफात की तरफ बढ़ रही है बात, तो देख लीजिए उन्होंने इसका ताल्लुक आपके अंदर सांस ऑक्सीजन से जोड़ा, जहन की सलाहियतों से जोड़ के बता दिया कि ये सारी एनर्जी जो लहरों और शौक के दोष पे काम कर रही है, इसको रिसीव करना, इसको रीड करना और फिर इसको कंट्रोल करना, ये जो है ना रद्दोबदल करना या उनको हरकत देने पर कुदरत। हरकत देने पर कुदरत का मतलब कंट्रोल। अगर आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं हासिल कर सकते, आप किसी दूसरे के थॉट्स को क्या कंट्रोल करेंगे? तो असल चीज है आपको अपने ख्यालात पे, अपने तसव्वुरात पे और अपने एहसासात और जज्बात पे कंट्रोल अगर हासिल होता चला जाएगा तो आप दूसरों के एहसासात और जज्बात और तसव्वुरात और ख्यालात को मुतासर भी कर सकेंगे, उनको हरकत भी दे सकेंगे। फरमाया कि अगर ये इनको हरकत देने पर कुदरत हासिल कर ले तो हम कायनात के तस्वीर खानों में ख्यालात के रद्दोबदल से वकूफ हासिल कर सकते हैं। यानी कायनात जो है ये सारे का सारा एक तस्वीर खाना है, ये तस्वीरें चल रही हैं कायनात में, उन तस्वीर खानों में ख्यालात के जरिए रद्दोबदल हो रहा है, अगर हम उसका वकूफ हासिल कर लें। देखे ना, एक बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा होता है, तो वो क्या है, उसके ख्यालात, वो ख्यालात वसूल करता रहता है, फिर वो इन्फेंसी से तफुलियत से निकल कर लड़कपन में आता है, ये सारा निज़ाम, फिर वो जवानी में दाखिल होता है, फिर वो जवानी के ख्यालात से गुजर के उधेड़ उम्री में चला जाता है, ये सारा निज़ाम ख्यालात पे। और क्या हो रहा है, उसकी तस्वीर ही तो बदल रही है बच्चे की। आप अपनी जब एक दिन के थे या चंद दिन के थे, उस वक्त की तस्वीर देखें तो आप पहचान नहीं सकते कि ये मैं हूं। गौर करें, ये सारा तस्वीर खाना चल रहा है और इसमें ख्यालात के रद्दोबदल से हो रहा है, ख्यालात का रद्दोबदल है, ख्यालात बदल रहे हैं, ख्यालात बदल रहे हैं। बच्चे के ख्यालात कुछ और होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता शऊर आता है, फिर वो नौजवान हो जाता है, वगैरह वगैरह। ये सारा ख्यालात का निज़ाम अब आपको वाजे हो रहा है कि ये है ख्यालात के रद्दोबदल, जब हम इसका वकूफ हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब तक कायनात की कुन्हा से हम बाखबर नहीं होंगे, कुन्हा किसे कहते हैं, उसकी जड़, उसकी असल बुनियाद, तो हम कायनात के कल्ब में कदम नहीं रख सकते। यानी जब तक हमें कायनात की बुनियाद नहीं पता कि कायनात अल्लाह ने क्यों बनाई, हम कायनात के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकते, उसके कल्ब में यानी उसके सेंटर में, कोर ऑफ द कॉस्मोस, कॉस्मिक सिस्टम के कोर में, कोर ऑफ द कॉस्मिक सिस्टम, उसके सेंटर में दाखिल ही नहीं हो सकते। कायनात और आसमान दुनिया में दाखिल होने के लिए जरूरी है कि हम सांस के उस रुख पर कंट्रोल हासिल कर लें, जिस रुख पर सऊदी हरकत का कयाम है। गौर करें, यहां कितनी खुली हुई साफ लफ्जों में कोई इफ और बट नहीं लगाया, अगरचे जुमला अगर से ही शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो कायनात इसमें आसमान दुनिया दुनिया के आसमान, यानी दुनिया का शऊर हासिल करने के लिए, कायनात का शऊर हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम सांस के उस रुख पे कंट्रोल हासिल कर लें जिस रुख पर सऊदी हरकत का कायम है। सांस के उस रुख पे, यानी सांस को अंदर लेने में आप जितना ठहराओ, जितनी तवज्जो देंगे, उतनी तेजी से आपका ये सलाहियतें बेदार होती चली जाएंगी। अगर हम इसको टारगेट कर लें, बाकी सारी मशकें एक तरफ, ये एक जुमला अपना लेने से आप देखेंगे कि आपकी रूहानी तरक्की दिन दुगनी और रात चौगनी हो जाएगी। सिर्फ ये करना है कि आपने सांस को आहिस्ता आहिस्ता अंदर खींचना और इस पे तवज्जो रखना। कोशिश करें कि बेशक घड़ी देखकर कि जी मैं 3 सेकंड में लेता हूँ, इसे 4 सेकंड कर दें, 5 सेकंड कर दें, 6 सेकंड कर दें, 7 सेकंड कर दें, 10 सेकंड तक ले जाएं। कोशिश करें कि सांस लंबा लें, आहिस्ता आहिस्ता लें, देर तक लें। हजूर फरमा रहे हैं कि सांस का गहराई में जाना लाशऊर है और सांस का गहराई से मुजाहराती सतह पे आना शऊर है। शऊरी जिंदगी हरकत में होती है तो लाशऊरी जिंदगी पर्दे में चली जाती है। यानी जब हमारा ध्यान शऊरी जिंदगी में होगा, शऊरी जिंदगी हरकत में होगी तो क्या होगा? जाहिर है लाशऊरी जिंदगी पसे पर्दा चली गई, उधर से तवज्जो हट गई हमारी। और लाशऊरी जिंदगी में शऊरी हरकत मगलूब हो जाती हैं, तो क्या होता है? लाशऊरी जिंदगी पर्दे में चली जाती है और लाशऊरी जिंदगी में जो शऊरी हरकत हैं वो मगलूब हो जाती हैं। यानी जब हम लाशऊरी जिंदगी में मतवज हो जाते हैं तो शऊरी हरकत मगलूब हो जाती हैं। यानी जब हम शऊर में होंगे तो लाशऊर मगलूब हो गया, जब हम लाशऊर में होंगे तो शऊरी हरकत मगलूब हो जाएंगी, ये कहा जा रहा है। इस कानून से बाखबर होने के लिए शऊरी और लाशऊरी दोनों तहरीकात का इल्म हासिल करना जरूरी है। जहन की पुर इसरार कुवतें उसी वक्त काम करती हैं जब जहन सांस की सऊदी हरकत का अहाता कर ले। ऐसा हो जाने से हमारे अंदर मरकजियत और तवज्जो की सलाहियतें बरुए कार आ जाती हैं। मरकजियत का मतलब है कंसंट्रेशन, यानी तवज्जो की फोकसिंग की सलाहियतें काम करना शुरू कर देती हैं। गौर कीजिए दोबारा इस पैराग्राफ को, बहुत तवज्जो से ज़हन नशीन करने की जरूरत है कि ज़हन की पुर इसरार कुवतें उस वक्त काम करती हैं जब ज़हन सांस की सऊदी हरकत का अहाता कर ले। अब देखिए ना, ये कितना अमली तरीका बताया। इसमें बात चली थी किताबुल मुबीन से, बात चली थी लोहे महफूज से, बात चली थी हजीरों से, बात चली थी सोलर सिस्टम्स से, फिर उसके बाद दुनियाएं, फिर उसके बाद अनवा, फिर उसके बाद एक फर्द, फिर फर्द के जहन के सारी बातें बताकर आपको आगाह कर आपको प्रैक्टिकल तरीका बता दिया कि कलंदर शऊर का हामिल बंदा दरअसल अपनी कुन्हा से वाकिफ होने के लिए अपने सांस को काबू में रखता है, उसको सांस पे कंट्रोल हासिल हो जाता है। साफ लिखा हुआ है, कोई बात पोशीदा नहीं रखी गई, वाशगाफ लिख दिया कि जहन की पुरिसरार कुवतें वो कुवतें जिनमें इसरार है अल्लाह के, उस वक्त काम करती हैं जब जहन सांस की सऊदी हरकत का एहाता कर ले। एहाता करने से क्या मुराद है? क्या आपको अपने सांस को अंदर लेने पे पूरी कमांड हासिल हो जाए? ऐसा हो जाने से हमारे अंदर मरकजियत और तवज्जो की सलाहियतें बरुए कार आ जाती हैं। हजूर फरमा रहे हैं, याद रखिए हमारे इनर यानी अंदर में नसब शुदा एंटीना, हमारे हम एक पूरा एक रिसीविंग सेट भी हैं और रिलेइंग सेट भी हैं। हम रिसीव भी करते हैं ख्यालात को और इसे नशर भी करते हैं, तो रिसीविंग के लिए एंटीना है, तो हमारे अंदर एक एंटीना लगा हुआ है जो इत्तलात को वसूल भी करता है, और इसी तरह जैसे टावर पे एक एंटीना लगा होता है वो नशर भी करता है। तो ये उस वक्त कुछ नशर करने या कबूल करने के काबिल होता है जब जहन में तवज्जो और मरकजियत की सलाहियतें वाफर मिकदार में मौजूद हो। ये राज बता दिया। इन सलाहियतों का जखीरा उस वक्त फाल और मुतहरिक होता है जब हम अपनी तमाम तर तवज्जो यकसुई और सलाहियतों के साथ सऊदी हरकत में डूब जाएं। यहां रुक जाते हैं। मेरा ख्याल है कि बात आपको समझ आ गई। आपके बहुत सारे सवालात के जवाब जो शुरू में थे कि ये सब कैसे हम हासिल करेंगे, आपने देखा कि हजरत मुर्शिद करीम ने किस खूबसूरती से सलीके से एक जुमले में पूरी बात वाज़े कर दी और उस बात की वजाहत के लिए कई पैराग्राफ्स लिख दिए। क्या कि सांस को तवज्जो से, महवियत से, इन्हमाक से अंदर लेना है, आहिस्ता 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 पूरा फेफड़े भर के, थोड़ा सा रोके फिर करके निकाल दे। हमारे यहाँ ये जो योगा का निज़ाम है उसके तहत वो हमें सांस अंदर लेने की तरफ भी मतवज्जो करते हैं, फिर उसे रोकने की बात करते हैं, फिर उसको निकालने में देर करें ताकि आपका शऊर मजबूत हो, वो इस चक्कर में डाला हुआ लोगों को। ठीक हो गया जी?